हाँ शांति जी,
बाबा ने कहा अगर देहवान ना हो तो क्या करो।
ढोलक लेके गले में डाल के तुम चलो बस बिठा रहा हूँ।
अगर देहवान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताओ कि बाप आया हुआ है।
पहले पहले बहुत हुआ करता है
भाई, है वो करता है इससे पीछे लग रहा था, अंत में बाबा लगाया होगा, कुछ बाबा चलता रहेगा ऊपर से, आगे भी ये कुछ हमेशा पीछे रहेगा, देखिए कहीं भी जाएगा स्कूटर पे ऐसे मिल जाएगा।
बाबा ने कहा तीर भी तब लगेगा जब
मानी
होगी, योग होगा। गला क्या करते हैं ज्ञान सुनाते सुनाते गला
थक जाता है,
थक जाता है, पर तीर नहीं लगता है।
बिना योग के थक जाता है,
तलवार में है उसको तो जोहर चाहिए, केवल सुनाने से कुछ नहीं होगा। सूरज भाई ने बताया था ना एक क्लास में, बहुत अच्छी बात बताई कि पहले प्रोग्राम करते थे मैं प्रदर्शनी, 1,00,000 रुपए खर्च किया, कोई भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि जब तक प्रदर्शनी आते आते आपस में इतना संघर्ष टकराव होता है कि जब प्रदर्शनी तैयार होती है और लोग आते हैं तब उनको दिखाने के लिए खाली चित्र रहते हैं, बस खाली हो जाए, भाग दौड़ में इतना खाली हो जाती कि कुछ रहता ही नहीं उस समय तक। प्रदर्शन जब तक आती है तब तक खाली, क्या दिखाएंगे खाली, क्या ये चित्र प्रत्यक्ष करेंगे बाप को? खाली खाली चित्रों से बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी। तो ढोलक लगा के क्या करो संजय भाई, सबको बताओ कि बाप आया हुआ है। तो सबको संदेश देने के लिए बाबा ने वापस कहा वाणी में, कुछ भी अचानक हो सकता है, समय अचानक आना है। अपना राज्य आया कि आया, कुछ भी अचानक हो सकता है। चलो वाणी डिस्कस करते हैं। क्या कहा भाई ने बाबा ने?
सौगात बाबा को देनी, सौगात,
सौगात देनी है। कौन सी सौगात देंगे? व्यर्थ से मुक्त और निर्विघ्न
अवस्था,
निर्विघ्न अवस्था। दो होमवर्क है, एक मास वाला है और एक 15 दिन वाला भी है। 15 दिन वाला आज पहला दिन ले लो, चलो नहीं नहीं 15 दिन वाला कौन सा है? नहीं 15 दिन वाला दूसरा है,
चेक करना है
किसको?
उसका ही वो एक महीना का है,
व्यर्थ जो 15 दिन,
उसको ही 15 दिन में।
नहीं व्यर्थ 15 दिन का होमवर्क दूसरा भी है। 15 दिन वाला दूसरा है, 15 दिन वाला कौन सा है? एक तो है निर्विघ्न, अभी निर्विघ्न के अंदर बताए संकल्प में भी निर्विघ्न, संकल्प शक्ति, तुम बच्चों में शक्ति है संकल्प की।
वहाँ पर क्वेश्चन है, वहाँ पर जो 15 दिन वाला है ना, क्वेश्चन है,
क्वेश्चन
के रूप
में है। बाबा ने कहा वातावरण का प्रभाव, तुम्हारी मन की जो शुभ कामना है, शुभ संकल्प, शुभ कामना, उस पर
प्रभाव
ना हो, इसमें सफलता, ये 15 दिन का होगा।
माया के वायुमंडल,
माया के वातावरण में जो है उसका कोई भी प्रभाव विघ्न रूप में, मन के शुभ कामना में विघ्न रूप न बने, ये 15 दिन। बाकी वो निर्विघ्न तो 1 मास है, ये एक ही चीज है वैसे देखा जाए तो, 15 दिन 1 मास और विघ्न और ये वातावरण सब एक ही चीज है, तो बस कहने की बात है। वार वार
शुभ संकल्प,
क्योंकि
संकल्प को हिलाए नहीं,
हमारे अंदर जो शुभ भावना है वो कम ना हो, कौन शक्तिशाली है, बाबा ने अव्यक्त वाणी में पूछा था, वो व्यक्ति माया तुमसे अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो हमारी शुभ भावना को कम कर देती है। स्टॉप माना स्टॉप। तो निर्विघ्न, निर्विघ्न अवस्था अर्थात क्या, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एक व्यक्ति है आलस और प्रमाद में रहता है, कोई विघ्न ही नहीं है, क्या इसको निर्विघ्न अवस्था कहेंगे? कोई विघ्न आते ही नहीं जिसके पास, उसमें क्या विघ्न है? खाना पीना सोना बस, विघ्न क्या कोई, क्या ये निर्विघ्न अवस्था है? विघ्न जीत विघ्न उसी को कहा जाता है कि जिसमें बहुत सारे विघ्न है और सबको पार करते हुए विजयी बना। शायद वो विजयी बना भी नहीं, परंतु फिर भी उसको विजयी कहा जाएगा क्योंकि उसने इतने सारे विघ्न पार कर लिए और भले
चल रहा है
लास्ट एंड में कोई दूसरा विजयी भी बन गया, परंतु फिर भी उसका जो ग्रेड है वो बहुत ऊंचा है। भले वो कोई और विजयी हो गया, ये सेकंड नंबर में आ गया, पर विघ्न इतने सारे पार किए तो उसमें तो ज्यादा ही है ना।
जनवरी में कोई मर जाता है ऐसे नहीं, उसको धर्मवीर कहते
हैं। धर्मवीर उधर नहीं आता, उधर परमवीर परमवीर।
एक्चुअली साकार मूल्य में बाबा जो कहता है विघ्न आता है, यज्ञ में जो विघ्न पड़ता है
वो साकार मूल्यों में बाबा अलग प्रकार से विघ्नों के लिए कहते हैं। शुरुआत जब हुई यज्ञ की तब विघ्न पड़े पवित्रता के कारण, वो बाहर वालों से विघ्न थे,
अंदर वालों से।
अभी यज्ञ में जो विघ्न है वो अंदर वालों से विघ्न है, वो विघ्न कुछ भी नहीं है। वो विघ्न कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे हैं बाहर के आने वाले। अंदर से जो विघ्न आते हैं वो यज्ञ के ही लोगों के अंदर से ही एक दूसरे में विघ्न अगर उत्पन्न कर रहा है वो ज्यादा खतरनाक। मन के विघ्न, काम के लिए बाबा ने आज बोला क्रोध जो है वो
प्रत्यक्ष
सबके बीच, सबके बीच में संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष होता है। अव्यक्त वाणी के वाक्य पर आज बाबा ने दूसरे वाक्य कहा कि दूसरों के बीच में दिखाई देते हैं वो कहते हैं, और काम जो है वो छिपा हुआ रहता है, उसको दिखता नहीं है। तो काम के संकल्प जो भी हम संकल्प कर रहे हैं उसका वाइब्रेशन फैल रहा है। हम व्यर्थ सोच रहे हैं यहाँ बैठकर, वो वाइब्रेशन फैल रहा है। हम काम विकार का सोच रहे हैं, वो वाइब्रेशन फैल रहा है। जो भी सोच रहे हैं वो स्प्रेड हो रहा है वाइब्रेशन में, और वही विघ्न रूप बन रहा है यज्ञ के लिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है।
ये है रावण गुप्त रूप से काम,
बहुत गुप्त है ये।
कल भी
ये तो रावण की आखिरी चाल है ना, जैसे टीवी को कहते जब पता चला कि ये तो जाते नहीं देखने, तो रावण ने एक एक घर घर में टीवी और एक एक हाथ में मोबाइल, ये उसकी आखिरी चाल है। रावण इतना उससे बहुत सीखने जैसा है, अगर इतना है कि वो हार ही नहीं मानता, कितना बार उसको हराओ,
ये दृढ़ता
दृढ़ता है उसमें, कितना भी हराओ पूरा चितपट कर दिया एकदम फिर भी उठेगा, एक प्रयास तो करेगा ही। और जो भी शत्रु होता है ना, एक अच्छा योद्धा, उसकी ये निशानी है कि मरने से पहले वो आखिरी में एक बार तो जरूर करेगा, वो मरेगा वैसा नहीं, चाहे लोग उसको समझ लिए मर गया चलो छोड़ो उसको, जाने से पहले कुछ ना कुछ तो करके जाएगा, गिराएगा वो एक बार।
एक वीडियो दी है आपने, रावण जो है ना शिव के पास जाता है, बोला तुम राम को मदद कर रहे हो?
कौन कौन बोलते हैं?
रावण, और रावण शिव के ऊपर मना
अंतिम लड़ाई के लिए जब विदाई लेता
है,
बोला आपने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, मैंने कठोर तपस्या की है, उसके फलस्वरूप आपने मेरे को शक्तियाँ दी है,
आपको शक्तियाँ देनी पड़ी मुझे साधना की थी,
और मैं अगर जीवित रहा तो अंत में आपका दर्शन करने जरूर आऊंगा, ऐसे करके।
बाकी मैं रावण, मैं राम की तरह गिड़गिड़ाता नहीं हूँ आपके आगे, राम गिड़गिड़ाता इसलिए आप उसकी मदद करते
हैं। राम को भी पता पड़ जाएगा माना क्या, लास्ट में बहुत खतरनाक है
रावण की बचा, रावण
नहीं, रावण से युद्ध करना कितना भारी काम है।
जो अच्छा योद्धा होता है ना उसको कभी अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना, एक और अपने दुश्मन की क्या कमजोरी है वो हमको पता रहना चाहिए, उसकी कमजोरी, जैसे रावण को हमारी कमजोरी पता है और वो बराबर वहीं पर अटैक करता है। नेपोलियन जो था वो किसी से नहीं कर सकता ना कभी किसी से वो हारा, पर उसकी जो वाटरलू का युद्ध है वहां पे हार हुई उसकी। क्यों? उसको बिल्लियों से डर था, तो उसके दुश्मनों को पता चल गया कि इसको बिल्ली से डर लगता है। तो जैसे वो आया इतनी बिल्लियां उसके ऊपर छोड़ दी, उसकी तलवार सब एक तरफ हो गई, उसको हार माननी पड़ी।
बिल्ली से डर रहा पिछले जन्म में होगा
पता नहीं। तो फ्रांस का था ना नेपोलियन, तो वो तो हार माननी पड़ी, फिर उसकी हार हुई। तो हमारा जो शत्रु है उसको कभी कमजोर नहीं समझना, छोटा नहीं समझना, हल्का नहीं लेना उसकी कोई भी वार को। वो बहुत बुद्धिमान है, एक एक चाल उसकी, उसमें सब साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देता है, और वो अंत तक हार नहीं मानेगा। ऐसा मत समझ लेना कि उनकी हार हो चुकी है और हम विजयी बन गए। ये युद्ध कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी। यू आर एट वॉर विथ माया, हम निरंतर युद्ध कर्म स्थल पर है, कोई भी नहीं छुटा इस युद्ध भूमि से। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र, गीता शुरुआत ही वहां से होती है। संजय उवाच,
तो माया इस तरह से घेरे हुए जैसे क्रिकेट में एक होता है ना बैट्समैन, वो एम्पायर एम्पायर और वो फील्डर और वो पब्लिक सारा उसको आउट करने में लगी होती, लेकिन हाँ। वो निश्चिंत होके और ये सब चीजों को साइड करके मारता
चौका के जुगाड़ में। अव्यक्त वाणी है 93, पांच खिलाड़ी पांच विकार, पांच विकार ये पांच खिलाड़ी और प्रकृति के पांच खिलाड़ी, वो पांच खिलाड़ी वो पांच। अभी खिलाड़ी कभी खेल ना करे ये हो सकता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा ने पूछा है कि ये खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी खेल ना खेले तो तुमको भी मजा नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खिलाड़ी ये जो खेल होता है इसको साक्षी होकर देखो, ऐसा उसमें कहा हुआ है। साक्षी अवस्था तो अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है,
सभी अवस्थाओं को
लेकर उपराम साक्षी अनासक्त निर्मोही एकदम, ये जो अवस्था है बहुत ऊंची हाई लेवल की अवस्था है।
बाबा को देखते हैं ना आज स्टेज में, कुछ भी हटा देंगे कुछ भी कर देंगे, लेकिन
वो भी देखो और दूसरा देखो गीत जो बजते हैं, बहुत धूम धड़ाके वाले गीत बज रहे हैं उस समय बाबा को, वो टाइम पर देखो कितना अनासक्त है वो गीतों से, कुछ उसको मतलब कुछ उसको वो गीतों का कुछ भी आकर्षण है नहीं लगता है, कोई आकर्षण है थोड़ा सा भी। बहुत अच्छा म्यूजिक है, आवाज अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, थोड़ा हाथ बज रहे
ड्रम भी
कुछ मतलब कुछ है ही नहीं। और वहाँ इस बार जब बाबा आए थे मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था, मुझे ऐसा संकल्प चला कि ये उस दुनिया से आया है जहाँ आवाज ही नहीं है, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा यहाँ बैठकर। ये जब वो जोर से गीत बजना चालू हुए ना, तो मैं एकदम से मेरे मन में संकल्प आया कि ये कहाँ से आया है, ये आया है वहां से जहाँ आवाज ही नहीं है, फिर ड्रॉप साइलेंस डेड साइलेंस है बिल्कुल भी।
क्या लग रहा है, क्या मजेदार,
तो क्या अनुभूति हो रही है कि इतना इधर आवाज प्ले हो रहा है, क्या इसको फील हो रहा है।
आती
होगी तो दबा देते हैं
थोड़ी, दबा देते
गीत बन के बैठ जाते हैं ना।
तो बाबा ने कहा निर्विघ्न अवस्था, तो निर्विघ्न अवस्था उसको नहीं कहा जाएगा कि जिसके पास विघ्न आते ही नहीं। निर्विघ्न अवस्था अर्थात निरंतर विघ्न आ रहे हैं पर वो हमको विघ्न नहीं लग रहे, ये एक डेफिनेशन हो सकती है। इतने छोटे लग रहे हैं वो कि जैसे विघ्न है ही नहीं वो। दूसरा कि विघ्न आ रहे हैं और उनका नाश हो रहा है, आए और खत्म हो रहे, आए और खत्म हो रहे, हमको कुछ नहीं हो रहा है उससे। तीसरा विघ्न आ रहे है उसको हम पेपर समझ रहे हैं। पेपर किस लिए होता है?
आगे
बढ़ने के लिए। अनुभव तो होना चाहिए ना, अनुभव भी बना रहे हमको विघ्न। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतने हम अनुभव भी बनेंगे, जितने विघ्न आएंगे उतने अनुभव भी बनेंगे। एक ब्रिटिश ऑथर है वो लिखता है कि जब मैं 20 साल का था तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी कितने बुद्धू है, कुछ नहीं समझता है उनको, जब वो खुद 20 साल का था। अभी जब मेरी उम्र 50 साल की हो गई है तो मैं सोचता हूँ ये 30 साल में मेरे पिताजी कितने होशियार हो गए। अब होशियार कौन हुआ? वो खुद, वो तो पहले से ही है, सब उसको समझ में नहीं आया,
समझ में नहीं आती।
जब वो 20 साल का था तो उसको लगता था उसके पिताजी बुद्धू है। अभी इसका अनुभव बड़ा अनुभवी तो ये हुआ, होशियार तो ये बना, तब उसको यहाँ जाके समझ में आया कि वो होशियार, वो तो पहले से है। जब हम कोई भी ज्ञान में आते हैं वो 1 साल फिर 10 साल जो भी जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तब जो बाबा को समझा था और ज्ञान को समझा था और अब जो ज्ञान को समझा, बाबा ने कहा ना याद करो। और व्यक्तवाणी में एक पॉइंट है क्या, जब से ब्राह्मण बने अब तक का समय ब्राह्मण जन्म को याद करो। अभी अव्यक्तवाणी में है ना, याद करो इस जन्म को कि तब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, तब हम किस रीति से मुरली पढ़ते थे और सुनते थे, गए मुरली सुना और आ गए, तब हम कितना समझ में आता था और अभी कितना समझ में आ रहा है।
संगम से लेकर
हम ये कहेंगे कि बाबा होशियार हो गया इसके समय में, वो तो पहले से ही है, हमको नहीं समझ में आ रहा था।
कौन सा राइटर है ब्रिटिश? कौन सा ब्रिटिश
राइटर ये
राइटर कौन?
हाँ हाँ ये है इंटरव्यू टेनिसन, सुना है? लॉर्ड टेनिसन,
जिसका मैंने पढ़ा है ड्रामा में,
तो उसमें लिखा है ये लॉर्ड टेनिसन,
फाइनल लिटरेचर इंग्लिश में आता है।
और क्या बोला बाबा ने? अच्छा हाँ विघ्न, तो निर्विघ्न की और विघ्नों से क्या क्या फायदा है, इस पे हम चिंतन करेंगे, अनुभवी बनाते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। और क्या होगा विघ्नों से?
शक्तिशाली,
शक्तिशाली बनते हैं, पक्के बनते हैं, दृढ़ बनते हैं। विरोध जब होता है ना तब हमारा वैराग्य बढ़ता है। बहुत वैराग्य आ गया और 10 लोग मिलके रोके तो और बढ़ता है। अगर बहुत वैराग आ गया, कोई ध्यान ही नहीं देता है बिल्कुल, तो कम हो जाता है थोड़ा सा। इसके लिए कहते हैं ना सन्यासी जो लोग बने ना इतने, ये सब माँ बाप की वजह से बने। अगर माँ बाप ने विरोध नहीं किया होता ना,
नहीं
बनते थे। वो उन्होंने किया ना विरोध, तो इसके लिए बन गए सन्यासी।
यज्ञ की शुरुआत में भी जो स्ट्रॉन्ग जो बने ना, विरोध हुआ,
विरोधाभास,
वो विरोध हुआ। और दूसरा बेगरी पार्ट,
बेगरी पार्ट,
ये दो किस लिए हुए? ये दो का कारण ही वो है कि बेगरी पार्ट इसलिए हुआ कि बहुत सारे कारण है उसके, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो इनको पक्का बनना है, जो कच्चे है वो निकल गए, आगे जाके दुनिया को फेस करना है। और हर परिस्थिति में योगी अर्थात सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, दोनों परिस्थिति में जीना आना चाहिए। बहुत सारे पर्पस है, त्याग हुआ, तपस्या हुआ, ये सब होना ही। बाबा चाहता था तो किसी को भी टच कर देता था, जैसे ब्रह्मा को टच कर दिया। कितने करोड़पति बैठे हैं संसार में आज, तो बोला करोड़पति की, करोड़पति की बात है, लखपति की बात नहीं है। वो तो साधारण समझते है बाबा उनको भी। तो ऐसा को भी, कोई को भी टच कर दिया होता, फटाफट लेके आके सारा पैसा डाल दिया होता यज्ञ में, बेगरी पार्ट 1 सेकंड में खलास। पर परमात्मा यज्ञ गरीबों की बूंद बूंद से भरेगा, परमात्मा तालाब, एक परमात्मा तालाब गरीबों की बूंद बूंद से भरेगा, एक मुरली में बाबा ने कहा। तो विघ्न और क्या करते हैं, हमको शक्तिशाली बनाते हैं,
आगे बढ़ाते हैं,
आगे बढ़ाते हैं, दृढ़ता आती है, शक्ति आती है, अनुभव बढ़ता है। और दुरान जैसी होते हैं, विशाल बुद्धि होती है, हम खेल समझते हैं और खिलौना है। हाँ बाबा ने एक मुरली चली है फुटबॉल के ऊपर, याद है? अव्यक्तवाणी है एक, फुटबॉल के खेल में अगर फुटबॉल को ठोकर मारे ही नहीं तो फुटबॉल, बॉल तुम्हारे पास आएगा तब तो तुम ठोकर मारोगे, और बॉल ही नहीं आया और तो गोल कैसे होगा? अव्यक्तवाणी है फुटबॉल पर। एक ही बार चली है अव्यक्तवाणी, ओनली वंस 90s में, नहीं तो याद नहीं। हाँ हाँ, हर एक को इच्छा है उनकी, मेरे पास है ताकि मैं मारू, क्योंकि जो गोल करेगा उसका नाम होगा ना। पर ये संकल्प नहीं करो कि आ जाए, आ जाए।
विघ्नों से वो डरता है जो एक्सपर्ट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है उससे।
विघ्न, विघ्नों से डरना ये साइन है कि तुमको उनको अनुभव नहीं है उस चीज का। जैसे हमारे पास कोई नया डॉक्टर आता है, बहुत सीरियस पेशेंट आता है तो एकदम डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि पेशेंट को देखने से पहले फोन चालू, तीन चार लोगों को बुला देते, आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। हमारे पास एक डॉक्टर थी वो पहले सुष्मिता, तो जैसे कोई सीरियस पेशेंट आता था सबको फोन करके बुला लेती थी, तीन चार पांच लोग आ जाते थे और देखता है कुछ भी नहीं है, चलो घर वापस। तो वो डर था, फिर धीरे धीरे पिकअप किया उसने, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो वो तो उसको निर्विघ्न अवस्था नहीं कहेंगे, निर्विघ्न मतलब विघ्न आए और अनुभव इतना है कि जो कुछ लगे ही नहीं, ठीक है
नॉर्मल।
नए हैं उनको डर लगता है, पुराने हो जाने के बाद डर नहीं रहता। तो विघ्न हमको डर से मुक्त करता है, विघ्न निर्विघ्न आता है तो डर से भी हमको मुक्त करता है। हमारे अंदर डर है, कई लोगों को मुंबई का डर है ना, मुंबई में जाना डर लगता है, थोड़ा लोकल में बैठने का डर रहता है कि पता नहीं कहाँ कैसे जाना, इतने सारे ईस्ट वेस्ट ये वो, अकेले जाने में डर लगता है, कोई भी जगह पे डर है ना। स्मशान घाट रात को 12 बजे सात चक्कर लगाने को बोला किसी ने, तो क्या बहने जाएंगी क्या, बहने है नहीं कोई। वो डर है एक अंदर, कॉकरोच से डर।
मैंने तो ग्लोबल में एक बार
डर होता है तो काफी लोगों का डर होता है,
डर मन में है, डर का अस्तित्व जो है वो एक परिकल्पना है,
उसको हटाएंगे
उसको फेस करके, जिस चीज से डर है उसको। विवेकानंद का उदाहरण है ना, जो वो सन्यासी है, पांच कुत्ते लग गए उसके पीछे, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, चार पांच कुत्ते उसके पीछे, बंदर है। तो एक सन्यासी उसको देखता है, सीनियर, वो सीनियर सन्यासी थोड़ा रहता है, बोलता है ये सन्यासी होके भाग रहा है इन बंदरों से। वो उसको बोलता है वहीं पे खड़ा हो जाए और उनके तरफ मुड़ के देखो, फेस द ब्रूट्स, वो ऐसा देखता है उनके तरफ, थोड़ी देर रहते भाग जाते। हम डर जो डरते हैं उनको भी और डराते हैं,
जो डरा सो मरा
उनको और डराते हैं। हम अगर डरे ही नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, ये समान में अगर कोई स्थित है तो
डराते हो क्योंकि उनको डर लग रहा है, इसलिए वो डरा रहे हैं।
हाँ, हमको डर क्या है, कुछ है ही नहीं, ये भूत प्रेत कुछ उनको नहीं डरा।
ग्लोबल में ना एक बार भट्टी हो रही थी, पहले उतने दिन जाते थे, हम नहीं जाते थे, डॉक्टर श्रीमंत कराते थे लोग, रात को बैठे थे तो डॉक्टर श्रीमंत सामने आगे बैठे थे, आगे की तरफ मुंह, बाकी सब पीछे बैठे थे, तो पीछे बहने भी बैठी थी सब। तो 12 का बजे का टाइम था, बोला नींद का टाइम होता थोड़ा ना, तो कमेंट्री दे रहे थे मैं मास्टर भूतनाथ हूँ। तो ये कमेंट्री शुरू हुई, दो मिनट पीछे देगा कोई बहन ही नहीं, सब बहने गायब, डर के शरीर।
स्वभावतः स्त्रियों में डर थोड़ा ज्यादा है, पुरुषों में डर थोड़ा कम होता है स्वभाव से, परंतु जरूरी नहीं है ऐसा, सब में रहता है। तो डर तो किसी भी चीज का हो सकता है,
अलग अलग हो सकता है,
असंख्य डर जो है ना, इतनी बड़ी लिस्ट है डर की, तो फोबिया इसको तो एक बीमारी में आता है, साइकेट्री में तो फोबिया कहते हैं इसको, कई लोगों को सोशल फोबिया होता है, बहुत सारे लोग है उनके बीच में भाषण, वो फोबिया होता है, क्लोज स्पेसेस डर, जैसे सबसे ज्यादा डर सन्नाटे का होता है, अंधेरा का होता है, रात का होता है, जंगल का होता है, जंगली जानवरों का होता है, ये सारे डर, तो सारे जानवर आ गए उसमें, कुत्ता बिल्ली सांप, ज्यादा अगर हो, नॉर्मल हो सकता है डर, कोई शेर आ जाए तो डरे ना, ये तो नॉर्मल नहीं है, पर जो जिसमें डरना नहीं चाहिए और डरते हैं, फोबियाज, इसको फोबिया की बहुत बड़ा टॉपिक है साइकेट्री,
पानी देख के डर लगता है,
हर चीज से डर लगता है। अभी इसके पीछे एक राज ये भी है कि जिसका जिससे मृत्यु हुई है उसको उससे डर लगता है, कोई पानी में डूब के मरा है तो नेक्स्ट जन्म में उसको बचपन से पानी, कोई को हाइट से डर लगता है, नीचे देख नहीं पाते, देखा तो इतना डर, बहुत तो हाइट का डर, चक्कर बहुत सारा हो जाता है, अलग 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 डर। हर आत्मा में ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है जिसमें डर नहीं है, हर एक चीज का हमारे अंदर डर है। किसी ने बोला अंधेरी रात में पर्वत पाउंड किसी पहाड़ी पर जाओ, डर तो रहेगा, डर है, कुछ नहीं है हाथ में, डर रहेगा। क्यों डर है? क्योंकि आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती ना। आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार किससे है?
सबसे बड़ा देवान तो यही है।
अपने डर को पकड़ना, लिस्ट निकालो कि मुझे किस, ये एक प्रकार के डर है। दूसरे डर है निंदा का डर, अपमान का डर, मेरी ग्लानी ना हो जाए, लोग मेरे विरोध में कुछ कहे ना, सबके सामने मेरे मेरे मुझे कुछ ना कहे, ये भी एक डर है। थोड़ा सा डर जरूरी है पर जीवन में श्रीमद का, बाबा धर्मराज भी है ना, थोड़ा सा डर जरूरी है। पर जो एक्सेसिव अपने हमारे अंदर ऐसा जो डर है कि जो बाकियों में नहीं है पर मुझ में है, तो मुझे उसको मुक्त करना है अपने आप को। और डर जैसे साइकिल चलाने से डर लगता है, नहीं चला पाता साइकिल, गाड़ी चलाने से डर लगता है किसको, वो कब जाएगा, चलाओगे तो जाएगा। डू यू डू इट बाय डूइंग, इंग्लिश में कहावत है यू डू इट बाय डूइंग, आप करोगे कैसे, करने से करो, जिससे जो जिस चीज का डर लगता है उसको सामने दे। किसी को डर लगता है कि मेरे पैसे है इतने, सब चोर लूट के लेके जाएगा, उसका डर, माँ बाप बीवी बहन ये सब मृत्यु हो जाएगी, उसका डर, कितने सारे डर, डर की बहुत बड़ी चीज। ब्राह्मणों के भी बहुत सारे डर है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो विघ्न आते हैं हमको डर से भी मुक्त करते हैं। वो आएंगे तब तो हम निर्भय बनेंगे ना, एक बार आया चलो पहली बार डर गए, दूसरी बार आया थोड़ा कम, तीसरी बार और कम, धीरे धीरे डर से मुक्त। और क्या होता है डर से फायदा,
डर से फायदा,
डर से नहीं विघ्न, डर से कोई फायदा नहीं है, डर नहीं से तो मरना है। डर जो आदमी डरता है वो तो मृत्यु उसकी बहुत बाद में होती है, वो तो पहले ही मर जाते हैं।
विघ्न एक्चुअली अगर कोई लक्ष्य रखा, मंजिल बनाई है हमने, तो वो हमें पहुंचाते हैं।
हाँ
तक पहुंचाता है, शक्तिशाली बनाता।
लक्ष्य बाबा कहते हमेशा कहते हैं ना, लक्ष्य तो लक्ष्य ना आएंगे,
स्वतः आ जाएंगे।
तो निरंतर लक्ष्य रखना है, लक्ष्य मतलब वो लक्ष्य नहीं है हमारा कि हम सतयुग में उच्च पद पाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये बाप समाज, ये तो अलग प्रकार की है। ये बोलने से तो मन में कुछ आता ही नहीं, ठीक है मैंने लक्ष्य बना दिया लक्ष्मी नारायण बनना है, ये बाप का वर्षा लेना है, अरे क्या उसका कुछ हाथ में तो कुछ है ही नहीं टेंजिबल, कुछ तो रहना चाहिए। वर्षा कौन सा, अभी अतीन्द्रिय सुख ही वर्षा है,
संगम के प्रारंभ,
संगम का अतीन्द्रिय सुख मुझे प्राप्त करना है, ये है लक्ष्य। 21 जन्मों का वर्षा वो दूसरे प्रकार का है, उसमें वो रिजल्ट है, वो अपने आप आएगा, परछाई है उसकी, वो प्रारब्ध इस प्रारब्ध की परछाई है।
ओरिजिनल माल
तो अभी मुझे अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है, ये संकल्प। अभी मुझे क्रोध मुक्त बनना है, अभी सर्वगुण संपन्न बनना है, सतयुग में सर्वगुण संपन्न नहीं बनना है, अभी जीवन मुक्त बनना है, अभी
बंधन मुक्त,
बंधन मुक्त जीवन मुक्त। दो प्रकार के, एक सतयुग जीवन मुक्त है और संगम युग का जीवन मुक्त। यहाँ जीवन मुक्त बनना है, यहाँ एक जीवन मुक्त, यहाँ एक बंधन मुक्त, यहाँ एक सर्वगुण संपन्न, संगम युग का ही प्रारब्ध, संगम युग का वर्षा, इसको लक्ष्य बनाना है। वो नहीं बाप समान बनना है, ये है कहने के लिए, वो अपने आप छोटे छोटे, एक होता है टारगेट्स, एक होता है गोल। टारगेट्स अचीव करते जाओ, यहाँ तक पहुंचना है, 10 गांव बीच में है, पहला दिन का लक्ष्य है मुझे ये गांव तक पहुंचना है, ये पहुंच गया गांव, दूसरे दिन का लक्ष्य ये गांव तक पहुंचना है, एक दिन हम दिन तक पहुंच जाएंगे। केवल पहले दिन ही कहते रहो कि मुझे वहां तक पूछना है, वहां तक पूछना है, अरे आगे तो बढ़ो, है ना। आज बाबा ने कहा ना वरदान में, जो दिनचर्या बनी है आलस और अलबेलापन, उसमें अगर आता है तो वो भी
पवित्रता है,
विकार का,
निर्विकारी नहीं कहूंगा,
उसको निर्विकारी नहीं कहेंगे, वो भी अंश है विकार का। तो लक्ष्य रखना है एक ही दिन का, आज कल सुबह अमृत वेले से लेकर तो रात तक निर्विघ्न रहे। बाबा ने कहा एक एक संकल्प पर अटेंशन आवश्यक है, दो शब्द यूज किए बाबा ने, तो अटेंशन और दूसरा चेकिंग, एक एक संकल्प की, हाँ जो सोचा वो हुआ, ये रात में चेक करो, वो दूसरा, तो एक तो चेकिंग करना है। अब क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हैं वो कंट्रोल में रहती है, तो बीच बीच में हम चेक करके अपने आप को रोक सकते हैं, जो बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल एक एक घंटे में थोड़ा सा मन को रोक कर वहां देखना कि निर्विघ्न हूं, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। बाबा ने दो वर्ड यूज किए, एक जगह का व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ संकल्प को, एक जगह बोला व्यर्थ संकल्प को कम करो, समाप्त करने का भी छोड़ दो। अभी फर्स्ट लक्ष्य रखो कि मुझे जितना व्यर्थ है मेरे पास उसको मुझे थोड़ा कम करना, कम। और वो कब करना है? कल। कल का जो दिन है उसमें कहां कहां व्यर्थ आता है। अभी व्यर्थ आने के कारण जो हमने देखे, विघ्नों से तो बहुत सारे फायदे हैं, हमको विघ्न जीत बनना है। अभी दूसरा एक प्रश्न है कि व्यर्थ
आने के कारण क्या,
अपने अपने कारण। वो लिस्ट तो हमारी बहुत सारी बनी हुई है, चार्ट लगे हुए है व्यर्थ संकल्पों के कारण 50। मेरा कारण कौन सा है?
अलग अलग सबके कारण।
मुझे कहाँ व्यर्थ आता है? व्यर्थ जो आत्मा में वो व्यर्थ आ रहा है ना, उसको ये महसूस तो नहीं रहती कि ये व्यर्थ है, चाहे हम हैं, आप हैं, कोई भी है, ये महसूस तो हो कि यही व्यर्थ है। इसको पकड़ना बहुत टाइम लगता है, चाहे सालों साल लग जाए पकड़ने में, खाली कि यही वो व्यर्थ है जिसने मुझे रोक के रखा है। ये व्यक्ति से व्यर्थ आता है, ये वस्तु से, ये परिस्थिति से, ये चीज से, ये चीज
पकड़ा जाए फिर छोड़ने में टाइम लगता है।
वो शायद वो जल्दी भी हो जाए बाद में, पर पकड़ में आ जाए, पकड़ में ही नहीं आता है कि यही वो व्यर्थ है। हम सोच रहे हैं वो नॉर्मल दिनचर्या में है, वो कितने सालों से चल रहा है, वो ठीक है।
इसमें आदतें बहुत काम करती हैं। देखा जैसे मान लो मैं अभी सेवा पर हूँ गेट पर, तो हमने जिसके साथ जिस तरह की आदत डाली हुई है और अगर वो बहुत मजबूत हो गई है लंबे समय से उसी तरह से
नहीं छूटती ना, वही तो। इसके लिए ना बाबा ने कहा उस दिन, एक चीज बोली ना बाबा ने, 2500 साल के जो पाप है कितने साल लगेंगे? 50-60 साल तो लगेंगे। उम्र कितनी है हमारी? 50-60 साल की उम्र ही नहीं है।
आज की मुरली में आ गए, 6 मास क्रोध
वाला।
आज ये एकमात्र मुरली है जिसमें ये पॉइंट है, बाकी कोई मुरली नहीं है। बाबा ने ये पॉइंट कहीं पर रिपीट नहीं किया है ये, अगर तुमने क्रोध किया
एक बार, क्रोध किया
तो लोगों की नजर में हो जाएगा कि ये क्रोधी है। 6 मास नहीं,
बाबा ने
6 साल
डांडस बता दिया,
शायद उम्र भर किसी ने बना लिया। हमने बहुत जबरदस्त क्रोध किया और किसी ने देख लिया वो, और वो चला गया,
सेव हो गया मन में,
उसके मन में अंदर घुस जाता है। हमने बहुत अच्छा कार्य किया और उसने देख लिया, 2 दिन में भूल जाएगा वो। ये मनुष्य स्वभाव है। बहुत अच्छा किया हमने, वो शायद 2-3 दिन याद रहेगा, फिर शायद भूल भी जाएगा। पर क्रोध करते हुए देखा वो लाइफ लॉन्ग उसके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। उसके बाद चाहे हम बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें सारे जीवन भर, और वो हमको रोज देखे भी करते हुए, पर वो जो उसने देखा उसको
बहुत करता है।
उस दिन जयंती बहन ने अनुभव सुनाया, तो हॉस्पिटल में आए तो कि जब वो नए नए थे, 25-26 साल के थे, दादी जान की वो कमरे में बैठे थे, वो ये कमरे में बैठे थे, तो एक कुछ पैसों की बात थी, किसी ने घुमा दिए पैसे, लॉस वो सब भाई बहनों के मिला के पैसे थे और किसी ने उसको जस्ट घुमा दिए, तो इसको इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा किया उसके ऊपर, बहुत डांटा उसको क्योंकि वो यज्ञ के पैसे थे और कैसे घुमा दिए। हाँ, उसने खुद अपना अनुभव,
गुम हो गए,
घुमा दिया, तो पैसे पता नहीं कुछ हो गया किसी कारण से, पर वो यज्ञ के थे और सबने भाई बहनों से, और पैसे आएंगे कैसे, वो भी कम नहीं, $400 कुछ कीमत वो थी। तो दादी जान की उधर सुन रही थी अगले कमरे में बैठी, और वो ये कमरे में फोन रखा, और उसको खुद भी समझ में आ गया कि मेरे से गलती हो गई, चाहे भले वो ये किया है पर इतना नहीं बोलना चाहिए था, जितना थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। क्रोध एक ऐसी चीज है ना, आवेश जब आता है इसमें थोड़ी गलती की पर हम थोड़ा ज्यादा ही बोल देते हैं। तो फिर दादी को बताया उसने, तो दादी ने कहा उसको, दादी ने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोला उसको, पर उसको खुद ही रियलाइज हो गया कि मेरे से गलती हो गई। तो उसने वापस जाके फोन किया, थोड़ा सा माफी वगैरह मांगा, पर जयंती मैंने अनुभव सुनाया वो बात को, अभी कितने साल हो गए, 40-50 साल हो गए, पर वो जो रिलेशन जो टूटा वो कभी जुड़ नहीं पाया,
टूटी हुई चीज कमजोर हो जाती है,
जुड़ नहीं पाती है, वो क्रैक रह जाता है खाच में। अभी कितने साल हो गए उस बात को,
जो भाई ने गलती किया वो उसने रियलाइज,
उसने भी रियलाइज कर लिया, मेरे से गलती हो गई तुरंत, उसने भी रियलाइज कर लिया और उसने कुछ बोला भी नहीं। जब इन्होंने सॉरी बोला तो उन्होंने भी ये किया, पर जो टूटा वो टूटा।
अभी वही बात है कि जैसे उस भाई के साथ में हुआ, हमारे 100 लोगों के लिए वो बहुत अच्छे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं हो सकते।
हाँ, जी, उसके लिए वो कभी अच्छी नहीं हो सकती,
ये
बात। वो टूटा तो टूटा, बहुत सूक्ष्म है क्रोध, तो इतना है तो व्यर्थ जो चलता है ना, क्रोध से भी बहुत व्यर्थ चलता है। क्रोध व्यर्थ का एक कारण क्रोध है, बहुत जबरदस्त व्यर्थ चलता है। क्रोध मुक्त बनना भी एक मंजिल है, बहुत ऊंची मंजिल। काम तो शायद जीत गए, पर क्रोध से मुक्त हो जाना बहुत बहुत ऊंची मंजिल है, बहुत ऊंची मंजिल है क्रोध से। क्योंकि क्रोध परिस्थितियों के टाइम आता है, हमारा अच्छी दिनचर्या चल रही, कोई विघ्न नहीं, कहां से क्रोध आएगा। सुबह योग किया, मुरली सुना, काम किया, कोई आके अचानक बीच में विघ्न बन जाता है तो क्रोध आता है। अचानक झूठे आरोप लगाता है हम पर तो तुरंत क्रोध आता है। अचानक ऐसी एक गलती कर देता है कि जिस गलती के लिए मतलब क्या कहे अब उसको, बहुत बड़ा जिससे नुकसान हो गया, ऐसी गलती तब क्रोध आता है।
कई बार कुछ बॉडी में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके कारण भी मैं समझता
हूं क्रोध आता है। बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो मैंने कहा था ना, जो सुख मिलता है तो इंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तो उसके विरोध के कुछ हार्मोन्स है, जब क्रोध आता है तो वो रिलीज होते हैं, तो उनसे फिर और आवेश आता है। चालू है रिसर्च क्रोध मुक्त बनने की टैबलेट।
क्रोध करने के पहले खाओ।
क्रोध से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, बाकी जो भी मेथड से सब फेल हो जाते हैं। संसार में तो बहुत सारे क्लासेस चलते हैं एंगर मैनेजमेंट का, ये करो, गिनती गिनो, उल्टी गिनती गिनो, ये करो, वो करो, इमेजिन करो, हंसता हुआ बच्चा, फूल, ये सब सोचो, हाँ, पानी पी, पोस्टपोन करो, बहुत सारा है।
वासाराम बोलते थे कि ऐसे आप ये जो अंदर की जो माना जो सांस है ना उसको ऐसे करके निकाल,
वो
लो नहीं,
लो वो बहुत सारे मेथड्स है,
समय याद रहेगा,
इतनी मेथड्स है, कुछ याद नहीं रहता,
कुछ याद नहीं रहता,
वो 10 मिनट के बाद याद आता है सर, तुरंत सारा ज्ञान संपूर्ण, ड्रामा की 50 पॉइंट सारी याद, फुल क्लास करा सकते हैं, पर वो मोमेंट पे गया,
उसके बाद इतनी निर्माणता आएगी,
बहुत
संपूर्ण जिम्मेदारी बन गए बिल्कुल कुछ,
पर वो मोमेंट ऐसा है कि उस मोमेंट पे हमारी हार हो गई।
इसके
लिए तो माया बलवान से बलवान, रुस्तम से रुस्तम, पहलवान से पहलवान, महावीर से महावीर होकर लड़ती है।
सर्वशक्तिमान से सर्वशक्तिमान,
ऐसे ही माया नहीं, माया को खत्म करना पड़ेगा। राम आगे जाता है, पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण, अभी लक्ष्मण को राम तक पहुंचना है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ऐसे उदाहरण बोलता है तुलसीदास, एक तरफ ब्रह्म है, एक तरफ जीव है, बीच में माया है, तो लक्ष्मण को सीता को खत्म करना पड़ेगा। वो है वेदांत, संन्यास का मार्ग। दूसरा मार्ग है भक्ति का, कि सीता की शरण में जाओ, भक्ति, वो ऐसे बताते तो माया को समाप्त करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया, और विघ्न क्या क्या आ सकते हैं जीवन में, उसी एक बाबा ने कहा क्या, प्रोग्राम बनाओ,
प्रोग्राम बनाओ,
मेरे जीवन में क्या क्या विघ्न है, मेरे जीवन में क्या क्या व्यर्थ है, क्या क्या वेस्ट है,
फिक्स करो,
उसकी एक लिस्ट चाहिए, बहुत सूक्ष्म लिस्ट है, बहुत सूक्ष्म। हम संगठन में चाहे 10 बना दे, पर वो शायद फिर भी मेरी जो है ना अंदर वाली, वो उसमें नहीं आएगा, वो कुछ और ही होगी। इतना पॉइंट निकालने के बाद भी कोई ना कोई पॉइंट रह जाती है वेस्ट की। स्थूल रूप से हम बहुत सारे बना सकते, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये वो, पर उसके बावजूद भी रह जाती है कोई ना कोई चीज। तो अपने व्यर्थ को ढूंढना है, और बाबा ने कहा प्रोग्राम बनाओ उसको खत्म करने का। और क्या बोला बाबा ने, चेकिंग चेकिंग करो, एक एक संकल्प पर अटेंशन की आवश्यकता है, चेकिंग और अटेंशन, अटेंशन में भी टेंशन नहीं। अटेंशन का ही टेंशन हो जाता
है। रिजल्ट पहले बोला अटेंशन माना टेंशन नहीं, फिर बोला उसका रिजल्ट है,
उसकी निशानी है,
निशानी हाँ निशानी है,
उसकी निशानी वही
हाँ वही वही जो पहले बोली, कोई टेंशन
कोई टेंशन
नो टेंशन।
अब विघ्न से मुक्त होने के लिए
अभी तो हमने विघ्नों की लिस्ट, व्यर्थ की लिस्ट ये हो गया, और बाबा ने विघ्न से मुक्त की एक विधि तो मुरली में बता दी,
सेवा में रहो,
बाबा को साथी बनाओ,
साथी बनाओ उसकी में बता दिया।
इतना काफी नहीं है, पर मतलब चिंतन चाहिए,
चिंतन
केवल एक वाक्य सुन लिया वो काफी नहीं है।
सेवा निर्विघ्न बनाती है और सेवा में विघ्न आते हैं।
सेवा ही निर्विघ्न बनाती है और सबसे ज्यादा विघ्न भी
सेवा में
ही है। दिन भर ही विघ्न तो है, सुबह अमृत वेला मुरली, इसमें कुछ खास विघ्न नहीं है। जो कुछ विघ्न है क्योंकि हम संपर्क में आ रहे आत्माओं के, अलग अलग संस्कार, भिन्न भिन्न झाड़ झाड़ की काठी सब है, वो टकराव होता है, टक्कर होती है संस्कारों में, वहां विघ्न है। तो क्या करेंगे विघ्न मुक्त बनने के लिए?
विघ्न मुक्त बनने के लिए तो ड्रामा के ज्ञान को भी थोड़ा,
ज्ञान को ही बढ़ाना है, एक ही चीज करनी है, चिंतन बस, सारे इसका सार एक ही है,
खुद ही खुद से बातें,
खुद ही खुद से बातें, खुद ही बाबा से बातें और ज्ञान की चिंतन, बस ये तीन काम है, अपने आप से बातें, बाबा से बातें और ज्ञान का मनन, बहुत चिंतन, बहुत
सरलता से ले हम,
सरलता से हाँ, कोई भी चीज
भारी नहीं करने की।
बाबा जैसे कहते हैं कोई पश्चाताप भी बहुत ज्यादा नहीं करो, वो भी टाइम
वेस्ट,
अभी तुमको टाइम लगाना है तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, कोई भी दूसरे चीज के लिए, अच्छा हमने बहुत सारे पाप किए चलो कर दिए छोड़ो, अभी क्या उसका पश्चाताप करते बैठे,
हो गया हो गया
हो गया, खत्म
खत्म हो गया,
जो किया वो किया छोड़ दो। वैसे तो बाबा ने कह ही दिया कि तुमने जितने पाप ज्ञान में आने के बाद किए हैं, जो पाप तुमको ज्ञानी बनने के बाद जितना टाइम लगता है भस्म करने के लिए, त्रेसठ जन्म के पाप को भस्म करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता तुम,
या भी नहीं
ना, तो बहुत कम है। और ज्ञान अज्ञान में जो पाप है उसका एक का एक गुना है दंड,
तो पद्म गुना है,
यहाँ एक का सौ है, या पदम को सौ ले लो, पदम मत बोलो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाप को छोड़कर किसी और को याद करना भी विकर्म है, आपको मैंने भेजा था ये साकार महावाक्य है, बाप को छोड़कर और किसी को याद करना भी विकर्म है, 69 की रात्रि क्लास, अगर ये विकर्म है तो अभी ज्ञान में आने के बाद एक का सौ गुना, पर पुरुषार्थ कितना करेंगे, वो तो डिप्रेशन वाली बात हो गई, छोड़ो मुझे ऐसे ही हो गया,
ऐसे सोचने से डिप्रेशन,
डिप्रेशन मुझे हो गया था अभी बीच में एकदम अचानक से, एकदम मतलब जैसे हाथी छूट गया पुरुषार्थ से, जो पकड़ा हुआ था छूट गया, जब मैंने सोचा कि 5 साल की वो मुरलिया, 45 ईयर्स की ये मुरलिया, मतलब 50 साल की मुरलियों का अध्ययन, स्टडी, मनन, चिंतन, एकदम जैसे एकदम डाउन ही हो गया थोड़े देर के लिए, आधा दिन थोड़ा फिर लाया बाहर धीरे धीरे ऊपर, मैंने सोचा ये कब मैं पढ़ू, कब इसका ये करूँ, बोलने अभी परसों बाबा ने बोला ना, यूनिवर्सिटी में तुमने देर से एडमिशन लिया, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, देर से कौन आया यूनिवर्सिटी में, तुम देर से आए तो तुमको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, परसों की मुरली थी ना,
मेले
डाले पुरुषों से नहीं होगा,
पहली बार आए
उसमें
उनके लिए,
डाले नहीं बोला,
तीव्र पुरुषार्थ, तो ज्ञान का बहुत अच्छा, मतलब मन बिजी रहना चाहिए तो वेस्ट नहीं आएगा, बस इतना ही, अभी बिजी किसमें रहना रहेगा, हमारे पास मुरली है उसको चिंतन करते रहो, मुरली मुरली योग का चिंतन करते रहो, उसी में भ्रमण करते रहो, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला बाबा ने, ये क्यों बोला, तो ऑटोमेटिक वहां बुद्धि रहेगी बिजी। इससे अगर छोड़ दिया, मैंने देखा कि जिस दिन मुरली का थोड़ा कम अध्ययन हुआ ना, उस दिन ही व्यर्थ आ रहे हैं,
दूसरी चीजें आ जाएंगी,
कुछ ना कुछ दूसरा संकल्प चल रहा है किसी के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति पर, या पास का स्मृति आ जाती है अपने आप, जो कि मर जो गई थी, जो कि मैंने सोचा था कि वो है ही नहीं अभी, वो कहां पे आ गई अचानक, चिंतन करने के बाद पता चला कि आज मुरली का चिंतन कम है, मुरली की पॉइंट्स कम याद है,
डुबो के रखना पड़ेगा पूरा,
गर्दन पकड़ के पानी में किसको डूबते है ना, बस अपने मन की गर्दन को पकड़ के पानी में उसको ज्ञान में योग में। हाँ बस ये दो ही मार्ग है, एक ज्ञान का चिंतन और दूसरा योग, बस इसी से व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। बाकी तो क्लासेस जो कराते हैं सब लोग उसमें बहुत सारी बातें बताते हैं, वो छोटी छोटी है पर मेन एक ही है बस,
ज्ञान युक्त योग।
ज्ञान युक्त योग, योग और क्या करेंगे, ये हो गया विघ्न, विघ्न से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त। और क्या बोला पापा ने अनिल भाई?
सेकंड स्टॉप तो स्टॉप,
स्टॉप तो स्टॉप,
वो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है।
बाबा ने कहा दूसरे दूसरे पॉइंट्स भी है ना उसमें। तुम्हारा जन्म कैसा है? ये
दिव्य अलौकिक और पूजनीय,
दिव्य अलौकिक पूजनीय और नया, ये तुम्हारा नया जन्म है, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण जन्म है आज की मुरली।
अब इसी पे ही बहुत चिंतन हो सकता
है, एक ही बस एक ही पॉइंट ले लिया इसके ऊपर सोचो, कौन सा जन्म है, क्यों जन्म है, दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है,
संगम की सारी यादें आती हैं
सब सब। बाबा ने कहा अगर तुमको केवल इतना भी याद रहे कि ये संगम युग है तो हो सौभाग्य, तुमको अगर इतना याद रहा कि अब घर जाना है तो हो सौभाग्य, एक भी पॉइंट अगर याद रही तो उस एक पॉइंट के साथ सारी पॉइंट जुड़ी हुई है। पर हम मना नहीं कर रहे,
में समाया हुआ है
आज तो बोला ना, फल फूल
ज्वार हीरे
जवाहरात सब इधर है, छाती से लगा रहे बैज, कितनी अच्छी पॉइंट बोली, बैच छाती से लगा,
सारा ज्ञान ही इसमें समाया हुआ है सचमुच देखो।
पर हम सोच रहे क्या, रूटीन समझ गया ना, तो सोच नहीं रहे उसके ऊपर,
बढ़िया सा
चाहिए, सोच नहीं रहे उसके ऊपर, वो लगा है बस, वो रूटीन सा हो गया। घर की बाबा ने कहा ना घर गंगा के बारे में बोला ना, गंगा के रहने वाले जो है उनको इतना कदर नहीं है,
कदर नहीं,
और बाहर वाले जो होते वो कुर्बान जाते हैं, बाबा ने कहा ये विदेशी 5 दिन मधुबन में रह के पांच एक साल की पूरा भरके लेके जाते जाते नहीं, 5 ही दिन लेते पूरा भरके लेके जाते।
सच में जो लगन वाले होते हैं ना लगता है भरके लेके जा रहे
हैं, मतलब उनको देखो विदेशी वो एक आपस में चर्चा करते हैं ज्ञान की, बैठेंगे ज्ञान के बारे में सोचेंगे, कहीं जाएंगे कुछ देखेंगे ज्ञान से ही कनेक्ट करेंगे हर चीज को। आज भी बाबा ने बोला वही, छोटी छोटी एक ही पॉइंट लेना है और उसके हर चीज पे चिंतन करने की, अपने मन को आदर डालनी है। बहुत ज्यादा एक है बहुत पढ़ना,
तो मच नहीं
वो नहीं, थोड़ा ही पढ़ो
थोड़ा थोड़ा
बस, और उसको जैसे ये मुरली है
रस आ जाए
बस, वो फिर धीरे धीरे ना हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। और क्या बोला, एक तो जन्म वाली बात थी, व्यर्थ वाली बात थी, विघ्न वाली बात थी।
एक मास का चार्ट कैसे बनाया,
हर एक का अपना अपना चार्ट, हर एक जनरल जनरल कुछ नहीं है, जनरल जो बनेगा ना वो पढ़ा रहेगा वैसे के वैसे, और वो चेकिंग भी जो है वो हमारी अपनी सूक्ष्म चेकिंग है, और वो चेकिंग भी है वो केवल रात वाली चेकिंग नहीं है, एक बार रात में चेकिंग करके खलास, ऐसा ही नहीं है। बाबा ने बोला बार 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 अटेंशन, दिन भर ही चेकिंग चलती रहे, निर्विघ्न ये रिजल्ट है एक्चुअली, हमारी अच्छी अवस्था जो है ना उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट है विघ्न, केवल ये संकल्प भी नहीं है कि मुझे निर्विघ्न बनना है, मुझे निर्विघ्न बनना है, ये तो वो तोते जैसा हो जाता है, वो भी बोलते रहना खाली। इसमें बहुत सारा करना पड़ेगा, जैसे उसमें एक संकल्प है, एक बहुत अच्छा संकल्प है कि मुझे झुक के चलना है, छोटा सा संकल्प है पर ये संकल्प सारे दिन भर में बहुत सारे टकराव से बचा देते
हैं।
हम सुखदेव हैं, मुझे झुक के चलना है, मुझे किसी की भी कंप्लेंट नहीं करनी है, ये भी कितना अच्छा संकल्प है। सारे दिन में ऐसी 10 बातें होती है कि जिसमें अंदर से इच्छा होती है, अच्छा इसने ये किया, ये तो बताना ही चाहिए, होता ही है कुछ ना कुछ कि जिसमें नेचुरल उत्पन्न होती है इच्छा कि ये मैं आगे बताऊं, किसी की ना कंप्लेन करनी, मुझे किसी से कुछ भी मांगना नहीं,
ये तो बहुत ही रॉयल और राजाई संस्कार।
कुछ भी नहीं मांगना है, कुछ भी चलो नहीं रहा तो चलेगा पर मांगी नहीं,
बिल्कुल
लेकिन बहुत संतुष्टता चाहिए।
नमक भी नहीं होता था तो भी
क्या कहना है, बिना त्याग के ऐसे थोड़ी करना है। हंसा बहन ने किताब लिखी है, हंसा बहन ने किताब लिखी है दादी जानकी के साथ के अनुभव की, छोटी सी मुझे इंग्लिश में लिखी है। इतनी छोटी छोटी बातें जो उसने ऑब्जर्व की है दादी की, वो सारी उसमें है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभव है इंग्लिश में, इतनी छोटी सी किताब है। एक एक चीज के बारे में, फूड फूड के बारे में, मनी पैसे के बारे में, पैसे बहुत सारे आते रहते हैं, उसको एक इतना सा भी ट्रेस भी नहीं है उसमें कि मैं मेरे लिए रखू। हाँ, कुछ मतलब उसका कुछ ये है ही नहीं, इतना ये इधर दे दो, ये उधर दे दो, उधर दे दो, खत्म। आंतरिक अवस्था कितनी, हाँ कुछ यही तो योगी की अवस्था है।
लास्ट ईयर सुनाया था कि एक कपल थे, तो वो दादी को मिलने आए, तो दादी को उनको रिंग पहनानी थी, तो उनके साथ मधुबन के शांति बन के पांच लोग हो चले मधुबन में, तो उनको पहनाई, तो उन पांचों को भी यहाँ तुम ले पहले मैंने सुनाया था ना,
ऐसे ग्रुप में मीटिंग में सुनाया था।
हाँ, तो उनको ये थोड़ी थी भाई ये तो घर के ही है या ये क्यों आ गए, नहीं नहीं आओ
जी। ये जो है ना, ये अवस्था के लिए कितनी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए आंतरिक, बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, बहुत बहुत। इसके लिए हम यहाँ बहुत अच्छा डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर जैसे कर्म में जाते ना सब कम हो जाता है, बाबा ने कहा ना वाणी और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसके लिए मनसा को शक्तिशाली बनाओ, पावरफुल बनाओ।
अभी भी बोला ना उमंग गुस्सा है,
उमंग कर्म में लाओ, उमंग कर्म में लाओ। मतलब देखो कर्म में आना ये फाइनल स्टेज है, पर उसके पहले की जो स्टेज है, जैसे एक एक है कि मुझे अभी एक जगह जाना है, मुझे माउंट आबू जाना है, कोई मैंने कभी देखा नहीं है माउंट आबू, पर मैं पहले से ही माउंट आबू का स्टडी करना चालू कर देता हूँ कि ये माउंट आबू का चार्ट है, ठीक है, मैंने ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ उसके बारे में, ये ऐसा है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ वो है, बहुत सारा मैंने एक साल तक स्टडी किया, और जब मैं पहुंचा और देखा तो बस वो फाइनल हो गया, वो बस एक लास्ट पायदान बचा था देखना, वो हो गया। तो वैसे ज्ञान का भी है फाइनल रिजल्ट है कर्म में आना, पर कर्म से पहले बाबा ने जो ज्ञान दिया है मुरलिया, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, हर हर बात के बारे में श्रीमद क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बाबा ने ऐसा कहा है, उसके लिए ऐसा कहा है, इसके लिए ऐसा कहा है, जानते 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 वो एक दिन आ जाएगा कर्म। शायद बहुत बार हमारी हार भी हो, दिल शिकस्त तो नहीं होना है, बस जो एक कमजोरी हमने सोचा चली गई, वापस आती, हार नहीं खानी, वापस उठना है, वापस चालू करना है पुरुषार्थ, वापस पुरुषार्थ चालू, कितना भी 10 बार भी गिर गए ना वापस चालू, यही तो है जीवन।
उठना ही एक बहुत बड़ी हिम्मत और निर्विघ्न बना,
चाहे हमको कोई लात मार के और गिराए नीचे, हम गिर गए और कोई गिराए, हिम्मत नहीं हमने, बाबा ने कहा है ताकत तो हाथ उठाओ। हिम्मत प्रमाण, बाबा ने कहा टाइम फिक्स करो हिम्मत प्रमाण। अरे क्या,
अरे इसी में तो है,
अरे क्या, अरे अटेंशन से मेहनत कम हो जाती है,
अटेंशन
बस अटेंशन रखना है। जगदीश भाई बोलते थे ना, जो जोत है ना दिन भर बुझनी नहीं चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी सी चलती है, थोड़ी थोड़ी, मतलब एकदम ही बुझना जाए दिन भर में, कि एकदम ही पूरा ही भूल गया बाबा 4 घंटे, और फिर बाद में याद आया अरे बाबा भी है क्या।
जगदीश भाई की उपस्थिति से सब चार्ज हो जाते थे, बोले कुछ भी ना,
बहुत अच्छा है। एक बार इन्होंने बहुत अच्छी बात सुनाई, बोला पेट तो इनका फूला हुआ था, बहुत वो सब होता, बहुत तकलीफ थी, अब कोई था नहीं तो शायद आवाज आ रही थी मुख से, ऐसे कुछ हो रहा था, तो ये नहीं बोला भाई साहब कुछ, तो बोला इनको कुछ संकल्प आया या पता नहीं, इनको ही पता,
रमेश भाई
इन्होंने बोला कि ये हूँ मालूम क्या होता है इसका मीनिंग, मास्टर सब सत्यवान हूँ।
बोला आप क्या सोच रहे, मुझे तकलीफ हो रही है, तकलीफ नहीं हो रही है, मैं मास्टर सब शक्तिवान हूँ, मैं उनकी उपस्थिति से ना सब एक आदमी शक्तिशाली है,
अपने आप को शक्तिशाली बनाना है बस। यही सबसे बड़ी सेवा है शिवरात्रि की, सबसे बड़ी गिफ्ट है स्वयं को ही
शक्तिशाली
बना के दे दो।
अच्छा
किसी
ने कोई गलती कर दी तो रजनीश भाई ये नहीं बोलते थे कि
अच्छा ये गलती अगले कल्प में ठीक कर लूंगे। इनके पास तो बहुत अनुभव है, पेट में पानी भर गया तो बताते हैं कि ज्यादा हो गया
बड़ा,
तो अपने आप ही बोले गणेश के निशान
विघ्न विनाशक तो गणेश ही है भक्ति में। और क्या बोला?
तुम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो,
बुद्धू बन के नहीं बैठा ना यहाँ पर।
बुद्धू बन के नहीं बैठने बोला।
बुद्धू स्टूडेंट की निशानी क्या क्या है संजय भाई? बुद्धू स्टूडेंट की निशानी बताओ। एक और बताओ थोड़ा, पीछे पीछे बैठेंगे। बुद्धू स्टूडेंट कहाँ बैठते हैं? पीछे, ताकि कोई देखे नहीं, नींद भी हो जाए थोड़ी बहुत। और टाइम पे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कदर रहेगी टीचर की, ज्ञान की?
बहुत सरल नेचर होती है
उनकी, एकदम टेंशन फ्री होते हैं। हमारे MBBS में जो बैच थी उसमें सारे मेरिट वाले थे, पर जैसे MBBS में एडमिशन मिली ऐसे हो गए कि जैसे पढ़ाई का नाम ही नहीं, पूरा एकदम कहीं दूसरी दुनिया में घुस गए, कुछ नहीं पता ही, जैसे खाली 2-3 मास एग्जाम के पहले, बस कुछ पढ़ाई का तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे अपना उधर कुछ और ही चालू रहता था, प्लानिंग, घूमना फिरना, मूवी और वो सब।
2-3 महीने में तो और कर लिया।
हाँ, होशियार तो रहते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, बड़ों को मत देखो। होशियार तो बहुत रहते हैं सर, उधर 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 ये रहते हैं, तो यहाँ पे भी 2-3 मास में सब कर देते। बुद्धि ऐसी चीज है ना, एकाग्र जब हो जाती है तो कुछ भी कर सकती है। स्मूथली क्यों नहीं याद रहती पता है? क्योंकि हम ना एक पॉइंट ये पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जब लास्ट तक आ गए ना, हमको किसी ने बोला क्या क्या पूरी पॉइंट बता दो, नहीं पता, क्योंकि एकाग्रता नहीं है वो पढ़ते समय। जब एकाग्र रहती है बुद्धि, सारा राग जो है ना मेमोरी का नहीं है, एकाग्रता का, कॉन्सेंट्रेशन।
कई बार एक बार देख लिया वो सब याद रहता है,
कॉन्सेंट्रेशन की ही बात
है, कुछ याद नहीं रहता।
इसके लिए उसको किस भाव से आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कितना प्यार से, लगन से, वो सब है।
अरे माताएं बहुत होशियार है, सुबह नीचे बैठती है ना माताएं, बहुत होशियार माता,
क्योंकि प्यार, इंटरेस्ट, वो सारे फैक्टर उसमें काउंट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, एक है ऐसी लिया हाथ में और पढ़ लिया पूरा, ठीक है, नाम मात्र के लिए तो पढ़ लिया,
जिगर से प्यार,
जिगर से उसको एक एक लाइन, उसकी एक रस लगना चाहिए, प्यार बड़ा हो बस।
रतन मई दादी के बहुत ज्यादा वो शब्दों में रहता है, बाबा ऊंचाई, बाबा की और महानता, वो मतलब जितनी वो लेवल कम है ना, अगर उस लेवल से हम देखते हैं तो हमें याद रहता है ये ऊंचे से ऊंचे महावाक्य है, बाबा की कितनी महानता है, निर्माण,
उसकी कदर कितनी है, नहीं
तो है, याद रहता है।
कुरान कहाँ कैसे रखते है बताए, वो उसमें रखते है कुरान, उसके उसमें रखते है बाइबल, उसमें रखते है, फिर कितना उसका महत्व होता है उधर, उसकी गीता भगवान की जय, गीता माई की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत कथा सुनी होगी तो उसमें भागवत की पूजा होती, सबसे पहले भागवत की आरती है, जय जय भागवत भगवान। मतलब भागवत कोई भगवान, वो किताब ही भगवान,
बाकी भगवान बाद में।
गुरु ग्रंथ साहिब वही गुरु है, मतलब कितना उसका मान है, तो उतना हम दे रहे हैं, चेक करो।
वो तो
से
प्यारे समझते ना, वो कुरान
बाबा की याद रहना, उसके ज्ञान की याद अर्थात बाबा की याद,
ज्ञान की याद,
बाबा के गुणों की याद अर्थात बाबा की याद, बाबा के कर्तव्यों की याद अर्थात बाबा की याद, बाबा की याद करता वो ठीक है, विकर्म विनाश परम धाम में बैठ के वो तो याद है, पर इसका मनन चिंतन में रहना ये भी उसी की याद है, भले इसे विकर्म विनाश नहीं होंगे पर कनेक्शन तो जुड़ा रहेगा, बुद्धि, दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स टू दैट,
खुशी बनी रहती है ना,
खुशी बनी रहती है, खुशी तो ब्राह्मण जीवन में तो खत्म ही हो जाती है, दिन भर में बातें ऐसी भयंकर होती है, सही, एक से बढ़कर एक बातें होती है हर दिन, नई नई, सीधा खत्म, खलास।
वैसे भी खुशी भी तो ऐसा ही होता है,
खुशी ऐसी
आशीष की तो खुशी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन।
आशीष का तो बहुत एग्जाम देना पड़ता है इसको, तो भाई मानना पड़ेगा, हम सब में सबसे ज्यादा मास्टर सर्वशक्तिमान तो ये नहीं करते
नहीं आपको करने की
स्वरूप
है,
स्वरूप
दुनिया भर का मैंने कहा यार ये स्थिति है,
मैं कारण वही ये सब अभ्यास करने वाले लोग हैं, अभ्यास निकलता।
और क्या बोला आज की मुरली बता दो अभी 5 मिनट संजय कुछ तो बोलो
की बात थी
आज का, बोलो ना कुछ
तो।
अरे हम बुद्धू का बोल रहे थे, बुद्धू का हमारा रह गया बीच में, और बोलो बुद्धू स्टूडेंट के नीचे टाइम पे नहीं आएगा, टीचर की कदर, टीचर को गालियां देंगे, ऐसे होते हैं ना, ग्लानी करेंगे स्कूल के बाहर, यूनिवर्सिटी की ग्लानी करेंगे और टीचर की भी ग्लानी करेंगे, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, कभी पढ़ेंगे ना किताब खोलेंगे,
खेलेंगे
कूदेंगे
खाएंगे पिएंगे
क्लासेस में
घूमने जाएंगे। एक ही क्लास में हमारे जैसे MBBS में एक लड़का 5 साल तक फर्स्ट MBBS में ही था, आखिरी तक जब हमारा निकल गया पूरा हो गया तभी वो फर्स्ट ईयर में ही था।
अच्छा लैडल
पूरा एकदम निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं, इतना अच्छा लैडल, कोई दुख भी नहीं, कुछ नहीं, फिर दया आ गई टीचर्स को, इसको पास करो टीचर्स को दया आ गई, कितना खराब लगता है इतने सारे जूनियर आए गए आगे वही है बेचारे को पास कर दी,
पास इसलिए कर दिए क्योंकि फेल हुआ अनुभवी बन गया,
हाँ पास कर दिया, अभी वो लीडिंग डॉक्टर है उसके गांव में, ही इज लीडिंग प्रैक्टिशनर, तो जितना ज्यादा फेल होता है ना वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है, ऐसा है डॉक्टरी में, तो जितनी बार MBBS
बच्चे
हैं रेगुलर क्लास में हाजिर
हुए भले
झुककर
खाए कुछ भी करे, लेकिन
रेगुलर ही
है तो
हम उसका
भी एक्स्ट्रा मार्क्स
होगा, वो तो है कहावत भी है ना कि अखाड़े में पड़े रहो ना लाख भूसा खा हो गए पहलवान बन गए निकलो,
हाँ वो मतलब वो तो क्या पद है, लेकिन बाबा ने बोला है पद क्या प्राप्त होगा, अभी तो जैसे कोई सेंटर इंचार्ज बहन है, अभी इसका जरूरी है कि वो सचिव इंचार्ज बनेगी, सचिव का आधार यहाँ का थोड़ी है, यहाँ कोई इंचार्ज है 10 सेंटर की तो उधर इंचार्ज बन जाएगी, आधार कुछ और ही है, पद का आधार
राज्य अधिकारी ही
है, योग है, पुरुषार्थ है, मेहनत है, ऐश्वर्य की अवस्था है, सबका दिल जीतना, कितनी बात है वो सारा इंक्लूड करके फिर
सुख देना,
और क्या बोला चाहिए, सब होगी बुद्धू स्टूडेंट, होशियार की तो बहुत अच्छी अच्छी निशानी है, होशियार स्टूडेंट सुशील भाई सबसे आगे, होशियार स्टूडेंट तो होशियार स्टूडेंट पंक्चुअल सीरियस एक्यूरेट रेगुलर स्टडी, होमवर्क करने वाले होमवर्क याद रहना चाहिए पहले,
होमवर्क
तो वाणी तो चली पता नहीं क्या होमवर्क तो याद ही नहीं, अभी होमवर्क जिसको याद ही नहीं करेगा क्या, एक तो पहले पता तो चाहिए बाबा ने क्या क्या बोला, तो होमवर्क पता चाहिए, होमवर्क याद चाहिए, और अच्छे स्टूडेंट नाम वाला करेंगे,
अच्छे स्टूडेंट
लक्ष्य रखेंगे ऊंचा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कभी, अच्छे स्टूडेंट अपना कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे जो कमजोर स्टूडेंट है उनको भी पढ़ाएंगे, वो इतने शक्तिशाली होते हैं तो वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कभी टीवी सिनेमा ये वो नॉवेल, अभी नॉवेल पढ़ने की बात आई थी ना, नॉवेल पढ़ते पढ़ते अगर सोए तो क्या गति होगी, बाबा ने पूछा प्रश्न
उस दिन चर्चा करी थी,
हाँ
मुरली में आया,
मुरली में की बात क्या गति होगी बाबा ने पूछा उसमें, क्योंकि उसमें इतना रस होता है, एक बार नॉवेल मतलब कहानी होती है ना, वो
नॉवेलों में होता है
जैसे कोई सीरियल होता है ना टीवी में, उसमें कोई खराब नहीं है सीरियल देखना है। पर एक
अपने आप कहानियां वगैरह इस तरह की,
हाँ कहानियां होती है, जैसे कोई सीरियल है एक सीरियल देखा तो ठीक है कोई नुकसान नहीं, पर वो ऐसी जगह एंड होता है कि ऐसा लगता है आगे क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट, मतलब उत्सुकता बनी रहती है, वो सस्पेंस वहीं छोड़ा जाता है, वो एक नेक्स्ट देखने की इच्छा है,
राइटर
तो संसार में बहुत है, यही तो करते हैं संसार वाले, बुद्धि बहुत है ना सच्चे बने उसी में कमाई
और वो होता
है रस भी होता है
कल्पना सारी वो
कल्पना है
मन की कल्पना ही होती है की सत्यता नहीं है
और प्रेमचंद ने इतना सारा साहित्य लिखा क्या है वो हैरी पॉटर के इतने वॉल्यूम से क्या है वो कल्पना ही है सारी हैरी पॉटर अगर कोई एक पढ़ने में लग जाए तो और इच्छा होती है और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ और शेक्सपियर वो बहुत महान संत टाइप था वो फिलोसॉफी था और वो नहीं ड्रामा है उसके सारे मैकबेथ
और ये
ओथेलो ये सारे जो है ना उसके एज यू लाइक इट ये सारे उसके ड्रामा वो भी यहाँ आने के बाद में वो सब निरर्थक हो जाता है गौन तो कोई महत्व नहीं है संसार की दृष्टि से बहुत अच्छा है वो जिसने वो सारा पढ़ा हुआ है ना वो उसको महान माना जाता है
जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ
यहाँ तो पहला ही वाक्य मैं जब ज्ञान में आया मेरा पहला ही दिन मैं इधर जब बैठा फर्स्ट डे पहली बार ही मुरली सुन रहा हूँ फर्स्ट टाइम पहला ही महावाक्य चला कि बच्चे जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ मैंने पीछे देखा मुझे बोले कोई टीचर मुझे ही बोला जा
रहा
मतलब फर्स्ट टाइम एक ये महावाक्य पहले बार सुना मैंने मुरली का बच्चे मीठे बच्चे अब तक जो पढ़ा है वो सब भूल जाओ मैं बोला ये मुझे बोल रहा जा रहा है डायरेक्ट कोई टीचर तो नहीं है क्योंकि इतना मैंने पढ़ के रखा था बाप रे पूछो मत सारे शेक्सपियर के इतने मेरे पास बुक थे ड्रामा उसके सारे लिखे आए थे एक एक पढ़ते पढ़ते चश्मा लग गया शेक्सपियर पढ़ते तो वो सब
नॉलेज भी
तो है पर ज्ञान एक ही है ये सत्य ज्ञान ये
आप तो बहन को बोलते थे नहीं नहीं ये नहीं है
क्या समझदार नहीं
बने
थे ना उसका बेबी सेंटेंस था ना पाना था सो पा लिया ये देखते थे बोला इसने क्या पा लिया पाया तो मैंने
क्या दिन दे भी है ना वो याद आती है संगम और ये
बोला वो दीदी आती रहती है
कभी कभी
आए एक दो बार मुझे मिले भी
माता जी के साथ ही आती हाँ चलो वो छोड़ो और कोई पॉइंट
एकदम बचपन में चले जाओ
ये एक पॉइंट
तब पास
होंगे और अंधेर नगरी चौपट राजा भी बीच में आया था कहीं
टकेसर भाजी
और टकेसर
पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पे चलो
वो कहानी अच्छी है ना पता है ना वो कहानी
नहीं
कहानी नहीं पता बहुत बढ़िया कहानी है
टकेसर भाजी
सब कुछ होता है
नहीं वो कहानी है एक साधु होता है उसका शिष्य गाँव में आते तो गाँव में आते देखते सारा गाँव बंद कोई दुकान चालू नहीं होते कैसे गाँव है ये तो रात होती है तो रात में सारे दुकानें खुल जाती है और सारे लोग चहल पहल तो कहते ये क्या गांव का नियम है तो बोलते ये राजा ने यहाँ का जो राजा है उसने ऐसा नियम बनाया है कि रात में ही सारे काम होंगे तो अच्छा ठीक है फिर एक दुकान में जाते खाना खाने तो बोलते ये कैसा दिया वो कैसा दिया बोलते कुछ भी लो जितना लेना है उतना लो कोई भी वस्तु लो चाहे खाने की हो या एक ही टके शेर में सब कुछ मिलेगा तो गुरु बोलता है ये तो बहुत खतरनाक गांव है इसमें नहीं रुकना चाहिए हमको शिष्य बोलता है नहीं मैं यही रुकूंगा मुझे इतना सस्ता सब मिल रहा है मैं क्यों नहीं रुकूं कपड़ा लो एक ही भाव ये लो एक ही भाव सब कुछ एक भाव में तो गुरु बोलता है ये बहुत खतरनाक गांव है यहाँ नहीं रुकना चाहिए शिष्य बोलते हैं मैं यही रुकूंगा तो गुरु चला जाता है बहुत समझाने के बाद शिष्य रुक जाता है उसी गांव में कुछ समय के बाद में एक साहूकार आदमी होता है उसके घर में चोरी होती है चोर आता है चोरी करता है चोरी जब जाता है निकलता है वहां से तो दीवार गिर जाती है उसके सर पर और वो मर जाता है तो वो चोर का भाई राजा के पास जाता है कि मेरा भाई मर गया ये साहूकार को जेल में डालो इसके वजह से मर गया
हाँ
तो राजा बोलता है अच्छा साहूकार को देखे उसको उसको हम फांसी देंगे ये नगरी ऐसी है मतलब उल्टा है तो वो साहूकार बोलता है कि मेरी क्या गलती है ये जो दीवार जिसने बनाई ना उसको उसकी गलती है उसको फांसी दो तो बोलते हैं अच्छा वो राजमिस्त्री को बुलाओ राजमिस्त्री बोलता है मैं क्या करूं मैं जब ये दीवार बना रहा था तो एक सुंदर नर्तकी सामने खड़ी थी मैं उसको देखने में लग गया तो बोलते अच्छा उसको सुभाषी की सहायता दी जानी चाहिए अभी हाँ। नर्तकी को बुलाते नर्तकी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं मैं तो वहां खड़ी थी पर जो दुकानदार था एक दुकान पे खड़ी थी वो एक साहूकार से बात कर रहा था तो गलती तो सारी उसकी है तो वो साहूकार वो ही है जो पहला था तो वो साहूकार को सजा दी जाती है दूसरे दिन तो उसके लिए तख्ती बनाई जाती है वो मरने के लिए तो मरने के लिए तख्ती बना के जब लेके आते हैं दूसरे दिन सुबह तो पता चलता है इसका गला बहुत छोटा है तो राजा बोलता है जिसका मोटा गला होगा गांव में कोई भी उसको फांसी दे दो इसको छोड़ दो तो मोटा गला रहता है वो शिष्य का तो शिष्य फंस जाता है वो एकदम डर जाता है उसको एकदम अपने गुरु याद आ जाते हैं
अच्छा
शिष्य का क्योंकि खा के वही रहता है ना तो उसको पकड़ के आते हैं और उसको फांसी देने लगते हैं बस फांसी मतलब तख्ती पर अभी मारने वाले रहते तो एकदम दिल से अपने गुरु को याद करता है तो गुरु आ जाते हैं तो गुरु आ के तो गुरु बोलते हैं वो सब समझ जाते क्या हुआ तो गुरु कहते हैं उसको उसके कान में कुछ कहता है तो राजा को डाउट होता है ये क्या कहा कान में क्या कहा तुमने तो कहता है ये कोई साधारण तख्ती नहीं है धर्मराज की तख्ती है जो भी इस तख्ती पे मरेगा पहले बार वो दूसरे जन्म में इसी गांव का राजा बनेगा और जो दूसरे नंबर में बनेगा वो मंत्री बनेगा राजा बनते मुझे मरना है मंत्री बनते सेकंड नंबर मैं मरूंगा तो पहले नंबर वो मरता है सेकंड नंबर मंत्री मरता है फिर वो गुरु एक अच्छे योग्य व्यक्ति को उस गांव का राजा घोषित करता है और वहां से निकलता है तो ये कहानी अंधेर नगरी राजा बाबा ने भी बोली
इसलिए खाना पीना जानते हुए मोटा आ जाएगी
तो अच्छा पुरुषार्थ करना है उसके लिए हमको विघ्नों की लिस्ट निकाल के अपने आप को विघ्न जीत विघ्न मुक्त करना है व्यर्थ से मुक्त कर देना है जहां जहां जीवन में व्यर्थ है इस मुरली को अच्छा बार बार स्टडी करो एक बार स्टडी करने से नहीं होता है पहली फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग में अंडरलाइन थर्ड रीडिंग में पॉइंट्स लिखना फिर इसको छोड़ दो अभी जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको पढ़ना बार बार और फिर उसका और चिंतन करना और चिंतन करके दूसरों को सुनाना क्लास में बैठ के क्योंकि अभी जो मैंने सुना है आपने जो सुनाया वो बहुत पक्का हो गया संस्कार रूप में बैठ रहा है अंदर संस्कार अभी हम क्रिएट कर रहे हैं नए वो पुराने संस्कार खत्म हो रहे हैं नए ज्ञान के संस्कार हमारे
नया जन्म
नए क्रिएट करना है वो चर्चा से होता है एक होता है कोई कोई लोग चर्चा नहीं करते ज्ञान में वो निकलना चाहिए और ऐसा भी कहा गया कि जिसका बहुत चिंतन है वो निकलता ही है वो बिना दूसरों को सुनाए रह नहीं सकता ऐसे करना
फॉर एग्जाम्पल दान की
हाँ दान से ज्यादा दान की को एक टॉपिक दे दो हिम्मत 10 क्लास कराएंगे हिम्मत पे एक क्लास ना मिले दूसरे क्लास से अगर मुझे हमको कोई बोले कि भाई हिम्मत पे क्लास कराओ ठीक है हमने ये करा दिया दूसरी जगह कराओ तो आधा तो वही रहेगा तीसरा ऑलमोस्ट वही रहेगा और इनको बोलो एक क्लास ना मिले दूसरे क्लास से सारे अलग टॉपिक एक ही ये है चिंतन गहराई है उसकी बाबा ने कहा गहराई में जाओगे ना तो मोती मिलेगी वहां घबराहट नहीं होगी गहराई में जाओ और ये रत्न कहाँ है
गहराई
मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो कविता है ना मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो पथ पर तो सब चलता है चलना पड़ता है पर मेरे पथ नया चरण मुझे सिखाते हैं जीवन के जीने के अपने अपने तरीके होते हैं मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो कविता है हरिवंश राय बच्चन की इंटरनेट से मिल जाएगी बहुत सुंदर कविता है बहुत उमंग आता है उससे
अमिताभ बच्चन की फादर की
कि मुझे अकेला चलना है इस मार्ग पर जितना गहराई जाएंगे तभी मोती आएंगे हाथ में नहीं तो नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया मुरली और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्कशन कर लिया कुछ नहीं होगा गहराई में उतरना है उसकी
बहुत बार पढ़ने पर ही आती है
एक दो बार पढ़ने से नहीं होता है अभी वापस आपने वो पॉइंट ला लिया टाइम
पकड़ने
हर एक को क्या है आज की मुरली चाहिए आज की अरे कल की तो पढ़ो पूरा आज की कहाँ है अरे वो पूरा की लगी हुई है वो तो बिल्कुल देखना भी नहीं है कल की तरफ बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है कल का देखने की तरफ, है ना। आज की खाई, आज की मुरली तो आज की पढ़ लिया हो गई पुरानी, अभी कल की चाहिए। एक मिनट तो कितना है वो उसका स्वरूप तो बन
एडवांस
ये इसमें आते रहता है, प्लीज सेंड टुडे मुरली, प्लीज सेंड, इधर उधर भेजते रहते, कल की मुरली चाहिए, आज की मुरली चाहिए, जो है उसको तो पढ़ो।
एक मीठे में चीप हो रहा है
मीठे क्यों है, यहाँ से चिंतन चालू होता है, मीठे कौन नहीं है, मीठे क्यों है, बस ये चिंतन है। एक ही लाइन पढ़ लिया और छोड़ दिया उसको, बस उस पर बैठो और लिखो
मीठे क्यों,
मीठे क्यों,
शाम तक मीठे बढ़ के निकलेंगे।
सच सच के सच सच के,
जैसे चींटियां चढ़ जाती, चढ़ जाओ।
अच्छा अगले, मैं एक अगले नहीं हूँ, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ शांति सरोवर में,
दो
वो तो लोग काम तो वो कुछ मेडिकल का ही है, पर वो निमित्त मात्र है, मेन कारण तपस्या।
अच्छी जगह
हैदराबाद।
अच्छा।